शांति। आज के सत्र में हमारी रीना दीदी जी पहुंच चुकी हैं। पहले रीना दीदी जी का तालियों से हम स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे, स्वागत करेंगे। जैसे कहते हैं, जीवन की यात्रा एक सुंदर यात्रा हमारे अच्छे कर्तव्यों से होती है, हमारे अच्छे व्यवहार से होती है, हमारे आत्मविश्वास से होती है, अच्छे रिश्तों या संबंधों से होती है। लेकिन न जाने क्यों आत्मविश्वास समाप्त हो जाता है, हमारी खुशी गायब हो जाती है, कुछ रिश्ते टूट जाते हैं या कुछ रिश्ते छूट जाते हैं। इन टूटे हुए रिश्तों को मजबूत करने और बिखरे हुए सपनों को या अपनों को समेटने या आत्मविश्वास को कैसे बढ़ाएं, आत्मविकास कैसे करें, इसी विषय को लेकर हमारी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी रीना दीदी जी उपस्थित हुई हैं। हम एक बार फिर से चाहेंगे कि उन्हों का तालियों के साथ आप स्वागत करेंगे। रीना दीदी जी, आप इस ब्रह्मा कुमारी संस्था से पिछले 23 वर्षों से मानवता के नैतिक एवं आध्यात्मिक उत्थान के लिए आप जुड़ी हैं और आप 2003 से ब्रह्मा कुमारी संस्था में समर्पित रूप से सेवाएं दे रही हैं। आपने मुंबई यूनिवर्सिटी से साइकोलॉजी विषय में एमए किया हुआ है। इसके साथ साथ इंटीरियर रिलेशन एंड पर्सनल मैनेजमेंट डिप्लोमा भी लिया है और साथ ही अन्नामलाई यूनिवर्सिटी से आपने सेल्फ मैनेजमेंट एंड क्राइसिस मैनेजमेंट से एमबीए किया है। आप विभिन्न विषयों पर सेमिनार या वर्कशॉप भी करवाती हैं, जैसे कि आत्मविश्वास का निर्माण, स्ट्रेस मैनेजमेंट, एंगर मैनेजमेंट, वैल्यू फॉर वैल्यूज, मैनेजिंग इन द सेल्फ, ऐसे विभिन्न विषयों पर आप गवर्नमेंट ऑफिस जैसे स्कूल, बैंक, महिंद्रा, सुजुकी आदि कंपनियों में या गवर्नमेंट ऑफिस में आप इस प्रकार के सेमिनार करवाती हैं। और वर्तमान समय में ब्रह्मा कुमारी वांगूर नगर राजयोग सेंटर गोरेगांव में आप सेवाएं दे रही हैं। दीदी जी, आप कितनी विशेषताओं को देखकर जानकर हमें ऐसा लगता है कि परमात्मा ने आपको लाखों की भीड़ में से खोजा है और हम उम्मीद करते कि वो आपको करोड़ों की भीड़ में भी खोने नहीं देगा, क्योंकि त्याग, तपस्या और सेवा आपके रग रग में समाया हुआ है। तो मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से अनुरोध करती हूँ कि कि दीदी जी का फूलों से स्वागत करने के लिए वो मंच पर आए। ब्रह्मा कुमारी बहने, फूलों के साथ दीदी जी के स्नेह की खुशबू इस हॉल में फैल चुकी है। हम चाहते हैं कि आप सबसे गुजारिश है कि तालियों की बारिश कर दो। अभी हम दीदी जी से सुनेंगे।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। लगातार दो तीन दिन से बहुत सुंदर अलग अलग सेल्फ डेवलपमेंट की टॉपिक्स, आध्यात्मिक बातों को हम सुनते आ रहे हैं। तो अभी तो पूरा चार्ज्ड हो गए होंगे ना, पूरा चार्ज्ड हो गए है ना, कुछ बाकी तो नहीं रहा है ना। तो फिर ये टॉपिक की तो जरूरत नहीं है क्योंकि जो भी बातें रही हुई होंगी संबंधों की, तो अभी तक तो वो सारी हील हो गई होंगी ना, हील हो गई होंगी ना। नहीं भी हुई हो तो अभी जो इन दिनों में हमने सुना, योग किया, तो इन बातों को साथ में लेकर जाएंगे। जब जब वो बातें सामने आती है तो उसको जीवन में अप्लाई करते जाएंगे, क्योंकि यहाँ बहुत सुंदर वातावरण में हम बैठे हैं और सारी बातों से फ्री है, तो शायद यहाँ पर कोई भी संबंधों की बातें नहीं आई होंगी, ठीक है ना। इन दिनों में कोई बातें तो नहीं आई सामने, कोई आपस में मतभेद या मनमुटाव कुछ ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना। लेकिन रोजमर्रा की जीवन में न चाहते हुए भी ये बातें आती है। ऐसा कोई है यहाँ पर जो कहे कि हमारे संबंध बिल्कुल परफेक्ट है, हमको संबंधों में कोई प्रॉब्लम नहीं है? कोई है तो जरा हाथ ऊपर करेंगे। परफेक्ट रिलेशनशिप्स है हमारे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कोई है? कोई एक दो होंगे, है ना। लेकिन अधिकतर क्या होता है कि हमारे रिलेशनशिप्स में जैसा हम चाहते हैं, चाहे बहुत अच्छे भी होंगे लेकिन जैसे हम चाहते हैं वैसा नहीं है। उसका कारण क्या है, बता सकते हैं क्या कारण है? कोई शेयर करना चाहेंगे? कौन सी ऐसी बातें होती है कि जो हमारे इतने मीठे प्यारे संबंध, उसमें कहां ना कहां प्रॉब्लम्स आ जाती है, इश्यूज आ जाते हैं, क्या कारण होगा जी? मिसअंडरस्टैंडिंग, एक्सपेक्टेशंस, और खुद का इम्पोर्टेंस ज्यादा है, दूसरों का नहीं सोचते हैं। अच्छा, और हाँ जी, ईगो है जी, और हाँ जी, एक दूसरे को समझते नहीं है, है ना, एक दूसरे को नहीं समझते हैं, और हाँ जी, हाँ मैं जैसे कहूँ वैसा ही होना चाहिए। तो हमारा ये ईगो भी कहेंगे, एक्सपेक्टेशन भी होता है, और क्या प्रॉब्लम्स आती है? रिस्पेक्ट मिलती है नहीं मिलती है, प्रॉब्लम क्या है? रिस्पेक्ट प्रॉब्लम है कि लैक ऑफ रिस्पेक्ट प्रॉब्लम है? लैक ऑफ रिस्पेक्ट। और सेल्फ पिटी, अच्छा मैं राइट हूं और आप गलत है ना। अधिकतर हम ये खेल खेलते हैं, अक्सर ऐसे कहेंगे हम लाइफ में आए, जीवन में आए किस लिए, हम किस लिए इस जीवन में आए? अभी तक तो इसका आंसर मिल गया होगा ना कि हम यहाँ इस जीवन में किस लिए आए हैं, किस लिए आए हैं जी? टू प्ले आर रोल जी। और कौन सा रोल प्ले करने के लिए आए हैं, हीरो का या विलन का, या जो मिले? हम तो आ गए हैं जो रोल मिले, है ना। कहते हम इस जीवन में आए हैं कुछ देने के लिए, है ना, सुख देने के लिए, सुख लेने के लिए, राइट। इसलिए आए हैं ना, इस जीवन में हम आए हैं ताकि हम एक दूसरे के साथ एक सुख की लेन देन कर सके, सुख का अनुभव कर सके, एक नेचुरल लेना और देना हमारा हो, कोई फोर्स्ड नहीं। लेकिन अब हमारी लाइफ कैसे हो जाती है, जो आपने कहा हम एक गेम खेलते हैं अधिकतर, हु इज राइट एंड हु इज रॉन्ग, है ना, और ज्यादातर हु इज राइट, कौन सही है, कौन सही है, वो सही है तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन मैं सही हूं और वो गलत है, वहां प्रॉब्लम होती है, क्योंकि सामने वाला भी यही सोचता है कि मैं सही हूं और आप गलत है। तो जहां हम ये सही और गलत की बात करते हैं, एक रीति से क्या ये जजमेंट नहीं हुआ किसी के बारे में, होता है ना। हम अक्सर किसी को देखते हैं, मिलते हैं या किसी के व्यवहार को देखते हैं तो हम उनके प्रति कोई ना कोई जजमेंट पास करते हैं, ये ऐसे हैं, ये वैसे हैं, ये कैसे बैठे हैं, ये कैसे चल रहे हैं, ये कैसे खा रहे हैं, हर चीज के पीछे कुछ ना कुछ विचार चलता है, चलता है कि नहीं चलता है, जजमेंट पास करते कि नहीं करते, रोज करते हैं कि महीने में एक बार, साल में एक बार करते हैं, रोज करते हैं ना। अब जब हमारे मन में हम किसी के प्रति जजमेंट्स पास कर रहे हैं तो क्या लगता है कि हम उनको सुख दे सके, एक लविंग अफेक्शन वाली, स्नेह वाली, समीपता वाली फीलिंग आएगी, आएगी नहीं। अक्सर जब हम कोई संबंध में आते हैं, चाहे वो हम एक फैमिली में है, चाहे हम कहीं कार्यक्षेत्र पर है, चाहे हमारे अड़ोस पड़ोस में है, हम किनके साथ ज्यादा घुलते मिलते हैं। फैमिली में तो ऑप्शन नहीं है, है ना, लेकिन बाकी और स्थानों पर किनके साथ हम ज्यादा घुलते मिलते हैं, फ्रेंड्स कौन बनते हमारे, फ्रेंड्स कौन बनते हमारे जी, हमारी नेचर जब मिलती है तो हम उनसे ज्यादा घुलते मिलते हैं, है ना, उनसे हमारी फ्रेंडशिप ज्यादा होती है। और रिलेशनशिप में इश्यूज कहाँ आते हैं, कि जहां हमारी नेचर मैच नहीं करती है, हम पूरब तो वो पश्चिम, है ना, जहां पर ऑपोजिट्स होते हैं या फिर नेचर मैच नहीं करती है तो वहां संबंधों में प्रॉब्लम आती है, तकलीफें आती है, हाँ राइट। ये एक कारण है कि हमारी नेचर नहीं मिलती है। क्या सभी की एक जैसी नेचर हो सकती है, हो सकती है, एक हस्बैंड और वाइफ दोनों की एक जैसी नेचर हो, एक जैसा पहनना, एक जैसा खाना पीना चलना फिरना, सब एक जैसा हो तो कैसा होगा, मजा आएगा कि बोरिंग लगेगा, बोरिंग लगेगा ना। और हमने कहा कि अगर नेचर मैच नहीं करती है तो प्रॉब्लम होते हैं, मैच करती है तो भी प्रॉब्लम होते हैं, तो भी अच्छा नहीं लगता है, तो क्या करना चाहिए, मैच होना चाहिए नहीं होना चाहिए, एक जैसा होना चाहिए नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक जैसा ठीक है, एक जैसा ठीक है, हमने व्हाइट साड़ी पहनी, आपको भी सबको बोले आप सबको व्हाइट साड़ी पहन के आना है, क्योंकि हमारी नेचर फिर एटलीस्ट बाहर से तो एक जैसी हो जाएंगी, चलेगा, ठीक लगेगा, ब्रदर सिस्टर सबको व्हाइट साड़ी पहन के आना है, चलेगा, नहीं नहीं चलेगा, है ना। ब्रदर्स तो व्हाइट साड़ी पहनेंगे ही नहीं, पहने भी कहेंगे कि हमको कंफर्टेबल नहीं है। हम जब एक पहनावे में भी अलग है, हमारी चॉइस अलग है, तो बाकी और बातों में कितने अलग अलग होंगे। और वास्तव में हमने जो यहां पर सुना कि हम सब आत्मा है ना, ये शरीर को चलाने वाली हम चैतन्य शक्ति आत्मा है, और हम आत्मा इस जीवन में जो कुछ भी हमने अभी तक अनुभव किया है वो सारा हमारी संस्कारों के अंदर रिकॉर्ड हो चुका है। हम जो कुछ भी देखते हैं, सुनते हैं, अनुभव करते हैं, वो सब हमारे अंदर में रिकॉर्ड हो गया है, हुआ है ना। एक व्यक्ति आज एक शरीर की आयु कितनी होंगी, कोई की 50 साल, कोई की 60 साल, कोई की 80 साल। और कहते हैं जितने साल बढ़ते हैं उतने हमारे संस्कार पक्के होते जाते हैं, है ना। जब संस्कार पक्के हो जाते हैं तो उसको चेंज करना मुश्किल। तो शरीर की आयु जितनी बढ़ती गई, हमारे अलग 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 एक्सपीरियंसेस, अनुभव जो आते गए, वो सब हमारे अंदर में रिकॉर्ड होता गया। लेकिन एक आत्मा, हमने ये भी समझा कि ये एकमात्र जीवन तो नहीं है ना, हम कई जन्मों से गुजरे हैं। इस शरीर में हमारी आयु 50 साल, 25 साल, 60 साल की हो सकती है, लेकिन इसके पहले जो हमारे जन्म थे उसमें भी तो हमारे बहुत सारे अनुभव रहे होंगे ना। कई साल हमने लेसन सुना होगा कि आत्मा तो जन्म पुनर्जन्म में आती रहती है, तो क्या हर जन्म में हमारे अंदर जो संस्कार भरे हैं वो एक जैसे थे, सबके एक जैसे थे? हमारे ही संस्कार क्या हर जन्म में एक जैसे होंगे? नहीं। तो जब एक व्यक्ति के अंदर कितने अलग अलग संस्कार भरे हुए हैं, कितने जन्मों के संस्कार भरे हैं, अब वो दो व्यक्ति जब साथ में आएंगे तो क्या होगा? क्या एक जैसी नेचर होंगी? एक जैसी नेचर होंगी? नहीं। जब हम किसी को देखते हैं तो ये ना देखे कि ये मेरा हस्बैंड है, ये मेरी वाइफ है, बच्चा है, कलीग है, पार्टनर है, स्टूडेंट है, लेकिन उसको ऐसे देखे कि ये भी एक मेरी तरह आत्मा है। वो आत्मा कि जो एक लंबी यात्रा से होकर के यहां पर आई है। हम सब आत्मा है और हम एक जर्नी से गुजरते हुए आए हैं, जिस जर्नी में हमने बहुत सारे अनुभव लिए हैं, उन अनुभवों को लेकर के हम चल रहे हैं। और वो दो जनों के एक जैसे नहीं होंगे। एक ही परिवार में भी दो भाई बहन हैं तो उनके भी अनुभव एक जैसे नहीं होंगे। कोई तो पहले जन्मा होगा, कोई बाद में जन्मा होगा, कोई कहेगा पहले जन्मा है उसको ये सारी बातें मिलती है, और कोई बोलता है कि नहीं जो छोटा है उसको ये सारी बातें मिलती है। तो दोनों के एक्सपीरियंसेस तो अलग अलग है ना, दोनों की विशेषताएं तो अलग अलग है, तो नेचर कैसे मिल सकता है? मिल सकता है? अब समझो दो आत्मा, उनकी आपस में शादी हो जाती है, एक्सपेक्ट करते हैं कि वो कैसे होंगे? हमारे जैसे होंगे। उनके विचार कैसे होंगे? हमारे विचार से मिलेंगे। जब एक्सपेक्ट करने लगते हैं तो क्या होगा? सामने से क्या होगा? क्या होगा? हाँ, एक्सपेक्ट करने से पूरा होगा? सॉरी, दुख होगा। एक्सपेक्टेशंस पूरे नहीं होंगे, है ना, नेचुरली। क्यों? एक्सपेक्टेशन अलग है, रिकॉर्डिंग अलग है, इसीलिए व्यवहार अलग है। तो नेचुरली फिर हम सोचते हैं कि वो हमारे जैसे हो, वैसा नहीं होगा। और फिर हम सोचते हैं कि अगर हमारे एक जैसे नेचर होंगे ना तो हमारे संबंध बहुत अच्छे होंगे। एक्चुअली संबंध को अच्छा होने के लिए एक जैसे विचार होने की या एक जैसा नेचर होने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये स्वीकार करने की जरूरत है कि हम अलग है, हमारी नेचर अलग है। जहाँ कोई अलग है, उस अलग को अगर हमने ये शब्द बोल दिया कि ये अलग है, लेकिन अलग के बदले हमने कहा ये गलत है, तो वहां प्रॉब्लम आ जाती है। समझो, जैसे हमने कहा मैंने व्हाइट साड़ी पहनी है, मेरे लिए तो व्हाइट सही है, सही है। आपके लिए, आपके लिए मैं ये सोचूं कि व्हाइट ही सही है, क्योंकि मेरा वो संस्कार है, मेरी वो नेचर है, और कलर रॉन्ग है, गलत है। मैं ये सोचूं तो मुझे लगेगा ये भी गलत है, ये भी गलत है, ये भी गलत है। धीरे धीरे क्या लगेगा, सारे जो बैठे हैं सब कैसे हैं, सब गलत है। राइट कौन है? राइट है, ये राइट है, राइट है। लेकिन अक्सर हम ऐसा सोचते हैं ना, सोचते हैं ना कि जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं कर रही हूँ या कर रहा हूँ वो राइट है, और उससे अलग जो भी बातें हैं वो सब रॉन्ग रॉन्ग है, गलत है, है ना? सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं? मैं फलाना काम करती हूँ वो राइट है, वो जो नहीं करता है वो सब। चलिए दो मिनट साइलेंस में अपने को देख हम कह रहे थे कि हमारे सबके संस्कार एक जैसे नहीं हो सकते हैं, संस्कार तो अलग अलग होने ही हैं। जैसे मान लीजिए किसी जन्म में किसी ने ये एक्सपीरियंस किया कि किसी के ऊपर बहुत ज्यादा विश्वास रखा था और उन्होंने बहुत बुरी तरह से वो विश्वास तोड़ दिया। अब आत्मा के अंदर रिकॉर्डिंग क्या होगी कि विश्वास करने से दर्द मिलता है, धोखा मिलता है। अब उस आत्मा के अंदर जब ये रिकॉर्डिंग है उसके लिए विश्वास करना सहज होगा, सहज होगा। कहावत है ना, दूध का जला छाछ भी फूक फूक के पीता है। अब वो आत्मा समझो उस जन्म में तो विश्वास नहीं कर पाएंगी, दूसरे जन्म में आके वो बात तो भूल जाएंगी, लेकिन वो जो रिकॉर्डिंग है वो तो अंदर रहेगी ना। अगले जन्म में फिर आगे जन्मों में कोई संबंध में आते हैं, सामने वाला कहे कि मैं तो आपके ऊपर इतना विश्वास करता हूं, तो आप मेरे पे विश्वास क्यों नहीं रख पाते हैं? कारण इस जन्म की शायद बात नहीं भी हो सकती, लेकिन आत्मा के अंदर वो बात रिकॉर्ड हो चुकी है कि ट्रस्ट करना माना दर्द मिलता है। तो क्या वो आत्मा कभी भी किसी पर विश्वास करेगी? क्या वो किसी पर विश्वास कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ट्रस्ट इज इक्वल टू पेन। लेकिन आपके अंदर रिकॉर्डिंग होगी कि विश्वास ट्रस्ट इज इक्वल टू हैप्पीनेस। और जब दूसरा आप पर विश्वास नहीं कर पाता है तो आपको हर्ट फील होता है कि ये हम पर विश्वास क्यों नहीं कर सकते हैं, ये ऐसे क्यों है। कारण अगर हम एक बात को समझ ले कि हम सब आत्मा है, वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी, हम जीवन यात्रा से गुजरे हैं, अलग अलग एक्सपीरियंसेस से गुजरे हैं, और शायद किसी समय इस आत्मा ने इस व्यक्ति ने ये एक्सपीरियंस किया होगा कि ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं, इसीलिए अभी वो विश्वास करने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं। जब हम इस बात को समझ लेते हैं तो शायद हमारे अंदर दूसरों के प्रति कंपैशन आएगा, हम उनको समझ पाएंगे कि ये ऐसा क्यों है। किसी व्यक्ति का समझो एक बच्चा है, उसके दोनों माँ बाप बहुत अच्छा तैराक है, स्विमिंग बहुत अच्छा करते हैं, फादर तो स्विमिंग में गोल्ड मेडलिस्ट रहे हैं, बच्चे को जब भी पानी के पास लेकर जाए वो बहुत डरता है, पानी में पैर रखने की तैयारी नहीं उसकी, माँ बाप बहुत समझाते हैं, समझा समझा कर थक जाते हैं, फिर भी बच्चा पानी में पैर रखने के लिए तैयारी नहीं है, दूर भाग जाता है, तैयार करके बहला फुसला करके स्विमिंग पूल के नजदीक भी लेकर जाए तो भी वहां से भाग जाएगा। और माँ पिता परेशान होंगे कि हम इतना अच्छा स्विम करते बाकी बच्चे भी कर पाते, ये क्यों नहीं कर पाता, ये क्यों नहीं जाता है। और कभी कभी माँ बाप क्या करेंगे कि बच्चों के अंदर कोई ऐसा डर है, कोई बात है, तो जबरदस्ती भी करा लेंगे, है ना, शायद जबरदस्ती भी पूल में ढकेल देंगे कि ढकेल दो तैरना अपने आप आ जाएगा। हो सकता है ना कि उस आत्मा का पिछला डेथ, पिछली मृत्यु शायद बहुत दर्दनाक रूप से पानी से हुई होंगी, डूबने से हुई होंगी, और वो रिकॉर्डिंग उस आत्मा के अंदर अभी है, और इसलिए इस जन्म में वो आत्मा पानी में जाने से डरती है, पानी से ही डर रही है, और आपने उसको अगर धकेल दिया स्विमिंग पूल में उसकी क्या हालत होगी, कितना टेरिफाइंग, कितना हॉरिफाइंग उनके लिए वो एक्सपीरियंस होगा, और शायद वो आपको कभी माफ नहीं करेगा अगर ऐसा किया, है ना। तो जब एक बात अपने रिलेशनशिप्स को हमें हील करना है तो ये एक बात हमको याद करनी है, बार बार यूज करनी है जब दूसरों के साथ संबंध में आते हैं कि हम सभी आत्माएं हैं, हम अलग अलग स्वभाव संस्कार वाली हैं, हमारे अंदर अलग अलग रिकॉर्डिंग है, वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी। जहां कंपैशन है, एक्सेप्टेंस है, तो वहां पर कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो सकती, और जहां ये फीलिंग क्रिएट की कि ये गलत है। कई बार बच्चों के साथ हम बार 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 ये शब्द यूज करते हैं, ये गलत है, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो जहां हम बार बार गलत 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 कहते हैं, तो क्या सामने वाले को कौन सी फीलिंग आती है, कौन सी वाइब्रेशन आती है? प्यार की, एक्सेप्टेंस की? कौन सी आती है? रिजेक्शन की, दूर होने की, है ना? तो जितनी बार हमने किसी को कहा आप गलत हैं, गलत हैं, गलत है, या सोचा, तो हमने क्या वाइब्रेशन दिया? डिसरिस्पेक्ट, डिसरिस्पेक्ट की हमने वाइब्रेशन दी। तो सामने वाला भी क्या रिफ्लेक्ट करेगा? वो भी हमारे लिए क्या सोचेगा कि आप गलत हो, आप गलत हो, है ना? कई बार बच्चों के साथ हम कहते हैं आप गलत है, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, ये नहीं करना, ये नहीं करना, ये गलत है, वो गलत है। तो बच्चा भी मन में सोचेगा नहीं आप गलत हो। माँ बाप फिर कहेंगे हम आपको समझ नहीं सकते, तो बच्चा भी कहेगा हम आपको समझ नहीं सकते। जिसको ये दुनिया में क्या कहते हैं, जेनरेशन गैप, कि दो पीढ़ी का आपस में ऐसा होता है, एक दूसरे को समझ नहीं पाते हैं। कारण कि हमने जिस जिस चीज को समझा ये अलग है, उसको अलग न कहते हुए हमने कहा गलत है। अगर अलग है ये कहा, तो फिर एक रिस्पेक्ट की एनर्जी जाती है, स्नेह की एनर्जी जाती है। और गलत है ये कहा तो डिसरिस्पेक्ट की एनर्जी जाएंगी, रिजेक्शन की एनर्जी जाएंगी, तो सामने वाला भी मन ही मन हमको रिजेक्ट कर देता है, बात को रिजेक्ट कर देगा। और इसलिए आज से लेकर के क्या हम इस एक शब्द को चेंज कर सकते, क्या इस एक शब्द को चेंज कर सकते? किसी के भी संस्कार को देखते हुए, किसी के भी ऐसे व्यवहार को देखते हुए जो हमारे जैसा नहीं है, उसके लिए हम क्या सोचेंगे? ये नहीं सोचेंगे कि ये गलत है, लेकिन ये सोचेंगे कि ये अलग है। करेंगे ऐसा? हाथ उठाएं जो सोचते हम करेंगे। आज एक शब्द ये चेंज करके जाएंगे ना, देखना पूरे दिन में ध्यान रखना, और इस कैंपस में सिर्फ रहते हुए नहीं, लेकिन वापस घर जाते हुए भी इस बात को ध्यान पर रखना कि किसी का भी व्यवहार मेरे से अलग है, तो उसको अलग कहना है, न कि गलत कहना है। हो सकता है? कर सकते हैं, है ना? कर सकते हैं ना? बस इतना याद रखना है कि वो आत्मा है, वो अपनी यात्रा पर है, उसके हिसाब से वो जो कर रहा है वो राइट है। हरेक की राइट की डेफिनेशन भी अलग अलग होती है ना। जैसे यहाँ क्लास में आने का टाइम 10 बजे का था, आप में से कई ऐसे होंगे जिनके लिए राइट टाइम क्लास में आने का 10 में 5 मिनट, पौने 10 ये रहा होगा। कई यहाँ पर पहले से आके बैठे, और कईयों के लिए सही का डेफिनेशन है कि 10 बजे का क्लास है, 10 बजे मेरा पैर हॉल के अंदर होना चाहिए, तो मैं बिल्कुल पंक्चुअल। और बाकी फिर कई होंगे जो सोचते हैं कि 10 बजे का तो टाइम है, कौन सा प्रोग्राम 10 बजे शुरू होता है, टाइम पर कौन से प्रोग्राम शुरू होते हैं, तो सही समय क्या होगा? सब आ जाएं, लेक्चर शुरू हो जाएं, फिर हम जाकर बैठते हैं, है ना? तो 10:15, 10:30, अभी तीनों में से कौन सही है, कौन सही है? फर्स्ट वाले, सेकंड वाले कि थर्ड वाले? हाँ, कौन सही है? फर्स्ट वाले। जो जो फर्स्ट वाले कह रहे जरूर पहले आके बैठे हैं, है ना? बाकी दोनों क्या है? हाँ, वेरी गुड, पास हो गए। बाकी दोनों अलग है ना? गलत नहीं है, अलग है, अपने अपने हिसाब से सही है। जो भी आए, लेट आए, कोई ना कोई कारण बना होगा जो आपको हमको पता नहीं है, वो अपने हिसाब से सही है। हाँ, ये बात जरूर है कि शिष्टाचार के अनुसार, डिसिप्लिन के अनुसार कुछ टाइम अगर हमको दिया हुआ है तो जरूर उस टाइम पर हमको पहुंचना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति नहीं पहुंचता है, हम बैठे हैं, पीछे से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, तो मन में हम ये क्रिएट ना करें कि अरे ये कितना लेट आ रहे हैं, ये तो गलत है ना। अक्सर करके जब कोई इधर से आते जाते हैं तो हमारा ध्यान भी जाता है, तो जरूर मन में विचार भी चलता होगा कि ये तो ये कोई टाइम हुआ क्लास में आने का, ये तो ऐसे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ मन में विचार चलता है ना। तो हमने नेगेटिव एनर्जी सामने वाले को दी उस समय, तो जरूर हमको अपने प्रिंसिपल्स, अपने स्टैंडर्ड्स को तो मेंटेन करना है। ये नहीं कि जो मन में आया किया, जब मन में आए क्लास में बैठे, जब मन में आए बैठे, डिसिप्लिन रखना है। लेकिन जो सामने वाला कर रहा है उस कारण हम अपने मन के अंदर नेगेटिव क्रिएट नहीं करें। जो वो कर रहे हैं वो तो वहां है, और जो हम सोच रहे हैं वो तो हमारे भीतर है ना। हम यहां पर नेगेटिव क्रिएट ना करें। हम इस बात को एक्सेप्ट कर ले कि हर एक का अपना नेचर है, हर एक का अपना कारण है। जहां एक्सेप्टेंस है, स्वीकार करते हैं जो है जैसे हैं, उसके लिए इस समय वो जो अभी कर रहे हैं वो राइट है। उसको मैंने एक्सेप्ट कर लिया, नेगेटिव एनर्जी खत्म, सामने वाले के लिए कंपैशन, रिस्पेक्ट की भावना आती, स्नेह की भावना आती है, तो वहां पर हम कभी भी दुख या हर्ट क्रिएट नहीं करेंगे। एक्सेप्टेंस है तो सामने वाले को भी हमने कोई बात समझाई, कोई बात कही, तो वो प्यार से उसको सुनेंगे। और जहां हमने जजमेंट पास किया, क्रिटिसाइज किया, आलोचना की, और फिर उनको कहा ऐसे नहीं, ऐसे होना चाहिए, तो क्या वो हमारी बात सुनेंगे? क्या वो हमारी बात समझेंगे? आप ड्राइव करके जा रहे हैं, सामने वाले का ड्राइविंग बिहेवियर आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आपने गाड़ी का शीशा नीचे किया और उसको जोर से चिल्लाया, क्या वो समझ जाएगा कि मुझे अभी ठीक से चलाना है? क्या उसके व्यवहार में कोई चेंज आएगा? नहीं। तो वो तरीका तो इफेक्टिव है भी नहीं ना किसी को चेंज करने का। हम ये सोचते हैं कि दूसरा हमारे हिसाब से चले, एक्सपेक्ट हम करते हैं तो वो हमारे हिसाब से कितना चले। जैसे हमने पंक्चुअलिटी की बात की, तो कई बार उसमें भी हमने कहा डेफिनेशन अलग अलग होता है। किसी को लगता है कि 10 बजे माना 10 बजे क्लास में पहुंचना है, कोई 9:30 से आके बैठे तो भी मन में विचार क्या आएगा, ये तो बड़े पंक्चुअल है, इतना भी कोई पंक्चुअल होना होता है क्या? कोई लेट आते हैं तो उसके लिए भी क्या विचार क्रिएट करेंगे कि देखो ये कितना लेट आ रहे हैं? तो हमें वही संस्कार अच्छा लगता है कि जो हमारे जैसा है, वही सही लगता है जो हमारे जैसा है, ना कम ना ज्यादा। समझो हम सफाई पसंद करते हैं, कोई अपने घर में सफाई हमारे जितनी नहीं रखते तो हम क्या सोचेंगे, देखो कितना गंदा रखा हुआ है, ऐसे भी कोई रहता है? और किसी के पास जाए, उनके घर में इतनी ज्यादा सफाई है, बार बार सफाई होती रहती है, तो कहेंगे टू मच है, इतना भी कोई सफाई रखता है? तो सही क्या है फिर? कि जो मेरा संस्कार है उतना ही होना चाहिए, ना कम और ना ज्यादा। हम दूसरों को अपने हिसाब से माप लेते हैं, है ना, हमारा मापदंड सही है और वो जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। जहां पर ये फीलिंग आती है तो दूसरा हमारे एक्सेप्टेंस के लिस्ट में कभी आएंगे ही नहीं आएंगे, क्योंकि उनको तो पता ही नहीं कि हमारी एक्सेप्टेंस कितने लेवल की है। और हमको भी दूसरों के बारे में पता नहीं होगा कि इनके अंदर क्या क्या संस्कार है ना। इसलिए बेस्ट स्ट्रैटेजी क्या है कि जो है जैसा है उसके वर्तमान के बिहेवियर को हमने क्या किया, एक्सेप्ट किया। अभी अभी चलिए हम एक एक्सरसाइज करते हैं। अभी अभी मन के सामने एक ऐसे व्यक्ति के को लेकर आए जिसका बिहेवियर आपको एक्सेप्टेबल नहीं लगता है, कोई डिस्टर्ब करने वाला व्यक्ति है। है कोई? हरेक के लाइफ में कोई ना कोई तो ऐसा होगा कि जिसका बर्ताव देखकर, बिहेवियर देखकर हम डिस्टर्ब होते हैं। है? अभी अभी उस व्यक्ति को आंखों के सामने लेकर आए और उनका कोई एक संस्कार जो आपको विशेष डिस्टर्ब करता है उसको सामने लेकर आए। और अब उनके इस संस्कार के लिए हम कहेंगे कि आज से मैं आपके इस संस्कार को स्वीकार करता हूं, एक्सेप्ट करता हूं। किया? कैसा फील होता है? कैसा फील होता है? एक्सेप्ट किया? एक्सेप्ट किया? किया? जिसने दिल से एक्सेप्ट किया वो हाथ ऊपर करो। और बाकियों को करना डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है? नहीं ना, दिल से एक्सेप्ट करेंगे तो जो अंदर में भरा पड़ा है किसी के लिए तुरंत वो निकल जाएगा, है ना? और जैसे ही हमने एक्सेप्ट किया अंदर से हमने अपनी हीलिंग करना शुरू कर दिया। प्रॉब्लम है वो वहां नहीं होती है, प्रॉब्लम कहाँ होती है? जो हमने यहाँ अंदर में उसके लिए क्रिएट करके रखा है। तो हीलिंग भी हमको कहाँ करनी है? वहां करनी है, सामने वाले को करना है? नहीं, हीलिंग हमको अपने अंदर करनी है, है ना? तो किसी का जब अलग व्यवहार देखते हैं, हमारे पास दो ऑप्शन है, एक कि हम एक्सपेक्ट करें कि वो हमारे जैसे हो और दूसरा कि हम एक्सेप्ट करें कि उनका जो व्यवहार अभी वो कर रहे हैं वो उनके हिसाब से राइट है। हर समय हमारे पास ये ऑप्शन होता है, आइदर यू एक्सेप्ट और एक्सपेक्ट। और जहां एक्सपेक्ट करते हैं वहां पर क्या होगा? आपने कहा हर्ट फील करते हैं। समझो बहन जी, उन्होंने आज बहुत मेहनत करके भोजन बनाया भाई साहब के लिए, है ना? सवेरे से लगे हुए थे, उनके पसंद के डिशेस बनाई, भाई साहब भोजन के लिए आए तो आते हाथ में न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर भी पढ़ रहे थे और साथ में भोजन भी कर रहे थे। बहन उनको बड़ी एक्सपेक्टेशन से देख रही है कि कुछ तो बोलेंगे, कुछ तो कहेंगे, है ना? भाई साहब की भी नजर जाती है, पूछेंगे क्या हुआ, तो बहन जी कहेंगे कि कैसा लगा। भाई साहब अगर कह दे अच्छा है लेकिन मेरे माँ के जैसा नहीं है, क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? खुशी होंगी, गुस्सा आएगा? किसको? हाँ, नेचुरली बहन जी को ऐसा कह रहे ना, बहन जी को गुस्सा आएगा। सवेरे से लेकर मैंने इतनी मेहनत की, आपके पसंद की डिश बनाई और आपने कितनी सहजता से कह दिया कि अच्छा है लेकिन माँ के जैसा नहीं है। भाई साहब तो खा करके चले गए कामकाज पर, लेकिन सारा दिन बहन के मन में क्या चलेगा? क्या चलेगा? वही बात मन में रिपीट होती जाएंगी, है ना? सिर्फ वो बात नहीं लेकिन पिछली और सारी जो प्रॉब्लम्स थी, सारी शिकायतें थी, वो सारी खुलती जाएंगी। और क्या होगा? धीरे 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 मन ऐसा भारी हो जाएगा, तो तब फील होगा कि ये तो अंदर में हम समा नहीं सकते, है ना? किसी को तो बोलना पड़ेगा। और कहा जाता है कि दुख बांटने से हल्का होता है, है ना? तो क्या करेंगे बहन जी? फिर फोन घुमाएंगी, मम्मी से बात करेंगी, मम्मी पता है आज क्या हुआ, या बहन से बात करेंगी या कोई फ्रेंड से बात करेंगी और फिर ये सारी अपनी दुख भरी बातें सुनाएंगी। और सामने से भी कभी कभी क्या रिस्पॉन्स होता है कि हाँ आजकल तो ऐसे होता है ना, हम करते रहे और सामने वाले को कोई उसकी कदर नहीं होती है ना। और जब ऐसा सुनते हैं तो दिल और भारी हो जाता है। हमने सोचा कि हम शेयर करेंगे तो हमारा दुख हल्का हो जाएगा, लेकिन जब हम प्रॉब्लम्स को ही शेयर करते रहते हैं ना, प्रॉब्लम्स का डिस्कशन करने से उसका सोल्यूशन नहीं मिलता है, प्रॉब्लम ही बढ़ती जाती है, हल नहीं मिलता है। अगर हमने सोल्यूशन के बारे में डिस्कशन किया होता तो बात अलग थी, तो सच में हम हल्के हो जाते। लेकिन प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, ऐसा है ऐसा है, हमारी तो इस घर में कोई कीमत नहीं है, बस हमारा काम तो यही है, नाना प्रकार की व्यर्थ बातें मन में आएंगी। और शाम को जब वापस भाई साहब घर पर लौटे तो बहन जी की स्थिति क्या होगी, स्थिति क्या होगी, शायद मुंह ऐसा फूला हुआ होगा या इतना मुंह इतना मूड ऑफ होगा कि भाई जी किससे बात भी नहीं करेंगे और भाई जी पूछेंगे क्या हुआ, बहन जी कहेंगी देखो उनको तो पता भी नहीं है क्या हुआ, आज सारे दिन में मेरा कितना विचार चला और वो पूछ रहे क्या हुआ। तो सामने से बहन जी कहेंगे बोलो सॉरी, तो भाई साहब क्या कहेंगे, सॉरी कहेंगे, सॉरी कहेंगे ना, क्या हो गया, समझो बहन ने बात बता भी दी, भाई साहब को कहा बोलो सॉरी बोलो, क्योंकि हम सोचते हैं कि सामने वाले ने मुझे दर्द दिया तो वो जब सॉरी कहेंगे ना तो मेरा दर्द चला जाएगा। तो सामने वाले ने समझो उनको तो समझ में न भी आया हो, लेकिन सोचते चलो सॉरी कह दे, इनका मूड ऑफ हो गया है, अपना मूड ठीक कर लो, खाना वाना बना दो, पिरोस दो, आई एम सॉरी, ऐसे करके सॉरी भी बोल दिया, लेकिन क्या इससे हमारा मूड ठीक हो जाएगा। हर्ट किसने क्रिएट किया, दर्द किसने क्रिएट किया, बहन जी ने कि भाई जी ने किसने क्रिएट किया, भाई जी ने तो बोला कि ये मेरी माँ जैसा नहीं है, ये बाहर की बात है, लेकिन उस बात को लेकर के मन में मैंने क्या बनाया है ना, उस विचार से मैंने अपने अंदर में कौन से विचार क्रिएट किए, उससे मेरे अंदर में पेन दर्द की फीलिंग महसूस होंगी। कोई भी व्यक्ति हमको हर्ट नहीं कर सकता है, कर सकता है कोई, कोई हमें हर्ट कर सकता है, हम अक्सर ये कहते हैं यू हर्ट मी, आपने मुझे बहुत दुख दिया, लेकिन कोई भी हमें दुख दे नहीं सकता है, कोई हमें कुछ बोल सकता है, हमारी निंदा कर सकता है, कोई हमें हो सकता है कि फिजिकली मार भी सकता है, बाहर से कोई कुछ भी कर सकता है, लेकिन दर्द की जो फीलिंग है, जो दिल दुखता है, वो तो अंदर की बात है ना, अंदर घुस करके तो कोई हमें दर्द नहीं दे सकता है? बाहर की जो भी बात रही होंगी, अंदर हमने उसको लिया और अपने अंदर में हमने दर्द क्रिएट किया, तो उस दर्द के रिस्पॉन्सिबल कौन है, उसके जिम्मेवार कौन है, हम खुद है। तो उसको ठीक किसको करना है, हमें खुद करना है ना, खुद को ही उसको ठीक करना है। तो हम अपने दर्द को ठीक कैसे करें, सिंपल बात है कि हम अपने इस दर्द को क्रिएट ही नहीं करें। बहन जी को भाई साहब ने कहा कि मम्मी के जैसा नहीं बनाया है, तो एक विचार करना है सिर्फ कि ठीक है ये इनका विचार है कि मेरे आपकी मम्मी के जैसा नहीं बना है, लेकिन मैंने तो अपनी बेस्ट मेहनत की है ना, तो मैं उससे संतुष्ट हूं। कर सकते हैं ये विचार, हो सकता है संतुष्ट कर सकते हैं अपने को, मुझे बस अपने इस विचार को चेंज करना है तो कोई दर्द की फीलिंग नहीं आएगी। किसी ने मेरी निंदा कर दी। ठीक है, ये आपका विचार है और हरेक को अपना विचार रखने का अधिकार है। आपने अपना विचार दिया, उसके लिए धन्यवाद। बट मेरा ये विचार अपने लिए नहीं है, है ना? तो सामने वाला आपको कुछ कहे, उसमें दो बातें हो सकती है। एक तो कि वो किस इंटेंशन से कह रहे हैं, हम उस इंटेंशन को कैच करें, उसमें मेरे लिए कुछ सीखने जैसा है उसको सीखे, बाकी हर्ट जो है वो अपने अंदर क्रिएट नहीं करे। ये एक ऑप्शन है। दूसरा कि सामने वाले ने जो कहा वो उसकी राय है, दूसरे किसी व्यक्ति को पूछेंगे शायद उसकी दूसरी राय होंगी, तीसरे को पूछेंगे तीसरी राय होंगी, हर एक की राय अपनी अपनी है। तो मैं उस व्यक्ति के प्रति कुछ नेगेटिव क्यों सोचूं, क्योंकि उसने अपनी राय मुझे दी है और उसको वो अधिकार है अपनी राय देने का। जब हम इस बात को इस प्रकार से लेते हैं तो हमें कोई हर्ट अंदर में फील नहीं हो सकता है। और इसलिए जब हमें अपने आप को हील करना है, हमने कहा संबंधों को हील करना है, लेकिन संबंध में दो व्यक्ति है, एक मैं और सामने वाला दूसरा। जब मैं हर्ट हूं तो मैं अपने संबंध को कैसे हील कर सकती हूं? जैसे समझो किसी व्यक्ति का पूरा शरीर दर्द कर रहा है, उसको भूल से किसी ने हाथ लगा दिया, पैर लगा दिया, तो क्या होगा? सामने वाला तो जोर से चिल्लाएगा और जिससे लग गया वो सोचेगा मैंने क्या किया, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। लेकिन दर्द क्यों हुआ? क्योंकि वो खुद पहले से दर्द में है, इसीलिए उसको वो दर्द की फीलिंग हुई। थोड़ी से एक्शन से, बस ऐसा हाथ लग गया, जोर से रिएक्शन निकल आई, है ना? तो जब हम संबंधों में हैं, ये हम एक स्थूल चीज को समझ पाते हैं, लेकिन जब हम किसी संबंध में हैं, तो उस संबंध में भी देखो तो कहीं ना कहीं हम भी अपने पास पास्ट के रिकॉर्डिंग्स, पास्ट के संस्कार लेकर आए हैं, पास्ट का कुछ दर्द लेकर आए। उस दर्द को किसको हील करना है? मुझे अपने आप को हील करना है। और यहीं पर आध्यात्मिकता हमें मदद करती है कि हम अपने प्रति अच्छा सोचे, हम अपने आप से प्यार से बात करें, हम अपने आप को एम्पावर करें, है ना? जैसे किसी व्यक्ति के लिए कोई कहे कि ये बड़े गुस्से वाले हैं, एक दो के ऊपर गुस्सा कर दिया, किसी ने कहा ये बहुत गुस्से वाले हैं, और दूसरे के साथ, तीसरे के साथ, चौथे के साथ ऐसे हुआ, तो उनके ऊपर जैसे लेबल ही लग जाएगा कि ये तो गुस्से वाला है, है ना? जो जो उनको मिलेंगे कहेंगे ये बड़े गुस्से वाले हैं। तो गुस्सा उनका जो पहले था, बार 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 वो रिपीट होने से वो संस्कार क्या होगा? पक्का हो जाएगा, पक्का हो जाएगा ना? और दूसरे सोचेंगे ये गुस्से किए बिना बात ही नहीं कर सकते हैं। हमारे पास वो पावर है कि हम किसी के संस्कार को पक्का कर सकते हैं और किसी के संस्कार को चेंज भी कर सकते हैं। उनके प्रति हम जो विचार क्रिएट कर रहे हैं उससे उनके वो संस्कार, उनके वो बिहेवियर पक्के हो जाएंगे। किसी को देखकर हम ये अगर थॉट क्रिएट कर रहे हैं कि बड़ा गुस्से वाला, ये बड़ा गुस्से वाला है, वो बड़ा गुस्से वाला है, बार बार वो एनर्जी जा रही है, तो क्या होगा? वो जो गुस्से का संस्कार है वो बढ़ेगा या घटेगा? वो बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना? बार 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 जो आसपास में है अगर वो रिपीट करते हैं तो सामने वाले का संस्कार बढ़ता है। और इसी रीति से हम उनमें जो देखना चाहते हैं वो हमने थॉट बार 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 क्रिएट किया तो उनका भी वो संस्कार बनेगा। कोई गुस्से वाला है, उसके लिए हमने विचार क्रिएट किया, चलो दूसरे का छोड़ो, हम अपने लिए ही करें। हमको लगता है हमें बहुत गुस्सा आता है, कभी कभी हम खुद के लिए भी कहते हैं मैं बड़े गुस्से वाला हूं। और हम यहां आए, हमने क्या सीखा? पहले दिन क्या सिखाया? कि हम एक आत्मा है और हमारा अपना नेचर क्या है? शांति। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। आई एम अ पीसफुल सोल। बार 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 इस चीज को सुनते रहे, रिपीट करते रहे तो क्या होगा? पीस का जो मेरा संस्कार है, शांति का जो मेरा संस्कार है, वो पक्का होगा। और फिर गुस्से का संस्कार धीरे 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 खत्म हो जाएगा। कब खत्म हो गया पता भी नहीं चलेगा। इसलिए जब भी हम यहां पर मिलते हैं तो बार बार क्या शब्द रिपीट करते हैं? क्या शब्द रिपीट करते हैं? ओम शांति रिपीट करते हैं ना। ओम शांति, इसका मतलब क्या है कि आई एम अ पीसफुल सोल। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। बार बार अपने को याद दिलाते रहे वो हमारी नेचर बन जाएंगी। हम अपने आप को ऐसे हील कर सकते हैं, है ना। हमारे सिर्फ एक शांति की बात नहीं है, लेकिन हमारे सात ओरिजिनल क्वालिटीज है, प्रेम, शक्ति, शुद्धि, आनंद, ज्ञान। ये हमारा अपना निज संस्कार है। जैसे मेरा है वैसे दूसरों का भी है। तो जिस व्यक्ति के प्रति हमको लगता है ना ये बड़ा गुस्से वाला है, तो उसके लिए क्या विचार क्रिएट करेंगे? ये बड़ा शांत है, पीसफुल है, लवफुल है। बार बार उनके लिए थॉट क्रिएट करेंगे, वो वाइब्रेशन भी उस आत्मा तक पहुंचेंगे और धीरे 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 समय लगेगा, लेकिन उनके अंदर क्या महसूस करेंगे कि एक बदलाव आ रहा है, चेंज आ रहा है। अंदर में उस आत्मा के भी वो संस्कार है, केवल हमको उसको जगाने की जरूरत है। तो उसके लिए सिर्फ सोचना नहीं है या बोलना नहीं है, लेकिन उसी दृष्टि से उसको भी देखना है। भले सामने का व्यवहार गुस्से का है, अभी वो गुस्सा भी कर रहे हो या लगता है अभी गुस्सा करेंगे, लेकिन हम अंदर से सोचे ये शांत आत्मा है, पीसफुल सोल है। धीरे धीरे क्या होगा, आप वो मैजिक देखेंगे कि उनके संस्कारों में, स्वभाव में परिवर्तन आ रहा है। तो क्या लगता है, क्या ज्यादा इफेक्टिव है? हम किसी के लिए नेगेटिव क्रिएट करें, ये गलत है, ये ठीक है, या हम उसके लिए ये क्रिएट करें कि वो पीसफुल है, वो लवफुल है, क्या सही लगता है? पहला वाला, सेकंड वाला? जिसको सेकंड लगता है वो दो हाथ ऊपर करो। ग्रेट, बहुत अच्छा। तो आज से हम करते भी होंगे, लेकिन उसको और पक्का करते जाएं कि हम दूसरों के प्रति इस प्रकार का विचार करें। जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हम उनके लिए सोचे, वो ऑलरेडी ऐसे है, है ना। जो वर्तमान का बिहेवियर है वो पास्ट के कारण है, जो वर्तमान का बिहेवियर है वो पास्ट के कारण है, जिसको हम नहीं चेंज कर सकते ना। लेकिन वर्तमान में हम जो कर रहे हैं वो तो हम चेंज कर सकते हैं ना, वो तो हम अपनी रिएक्शंस उनके लिए चेंज कर सकते हैं ना। तो हम वो करें जो हम कर सकते, राइट। और उससे क्या देखेंगे कि हमारे बिहेव, हमारे आपस के संबंधों में धीरे धीरे एक मधुरता आती जाएंगी, आपस के हमारे संबंध सुधरते जाएंगे, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना आएंगी। हम कभी कभी किसी के संस्कार को नहीं भी समझ पाए कि ऐसा क्यों है। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कि हम समझे कि क्यों। कभी कभी किसी का स्वभाव ऐसा होता है कि जब तक उस क्यों का जवाब नहीं मिलता तब तक आगे ही नहीं बढ़ पाते हैं, वहीं पर गाड़ी अटक जाती है। लेकिन क्यों, क्यों का जवाब मिल भी जाने से फर्क क्या पड़ेगा? ऐसे क्यों है उसका जवाब मिलने से भी फर्क क्या पड़ेगा? अभी तो जो सोल्यूशन देना है वो तो देना ही है ना। अभी का जो व्यवहार मुझे करना है उनके साथ वो तो अच्छा करना ही है ना। तो क्यों पे शायद हमारे में वो अभी क्षमता नहीं है कि हम किसी को समझ सके, शायद वो संस्कार हमारे अंदर नहीं है। जरूरी नहीं है कि हम समझे, लेकिन ये जरूरी है कि हम एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस इज मोर इम्पोर्टेंट, कि जो भी है जैसे भी है उनको हमने एक्सेप्ट किया, न कि जज किया। जब भी हमने जज किया हमने उनको अपने से दूर कर दिया, या फिर कॉन्फ्लिक्ट में हम एक दूसरे के आ गए, राइट? तो इस बात को हम ध्यान पर रखेंगे कि हम जब दूसरों को देखते हैं, उनके कुछ अलग व्यवहार को देखते हैं, तो हम ये अंदर में ध्यान रखें कि ये अलग है, गलत है, ये हम मन में नहीं लाएंगे। जो सामने वाला कर रहा है वो उनका बाहर का व्यवहार, वो उधर की चीज है, और जो मैं अपने अंदर में रख रही हूँ वो मेरे हाथ में है। जो बाहर हो रहा है उसे मुझे अपने भीतर में नहीं रखना है। और तीसरी बात कि जो हम दूसरों से चाहते हैं वो हो, वैसा हम उनके लिए सोचे, जो वर्तमान में वो बिहेवियर कर रहे हैं हम वैसा नहीं सोचे, लेकिन जैसा हम उनको चाहते हैं हम वैसे उनको देखें। ये याद करें कि हम सब एक जीवन यात्रा पर से गुजरे हुए हैं, वी आर ऑल सोल्स ऑन अ जर्नी। इस जर्नी में हमने बहुत अलग अलग अनुभव किए हैं, इसीलिए हम सब अलग अलग हैं। हम एक जैसे नहीं हो सकते हैं, लेकिन इट्स ओके। हम सब एक जैसे होंगे तो भी ठीक नहीं है, तो इट्स ओके टू बी डिफरेंट, इट्स फाइन दैट वी आर डिफरेंट। बट टू थिंक कि हम गलत है, ये गलत है, ये डिसरिस्पेक्ट की फीलिंग क्रिएट करता है। और किसी भी संबंध की जो फाउंडेशन है वो रिस्पेक्ट है। जहां फाउंडेशन मजबूत है, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट की भावना है, वहां अलग अलग ओपिनियन होंगे तो भी प्रॉब्लम नहीं आएंगी संबंध में। लेकिन जहां फाउंडेशन में ही डिसरिस्पेक्ट है तो फिर वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। एक भाई अपना अनुभव बताते हैं ऐसे कि जब मैं पहली बार अपनी होने वाली पत्नी से मिला था तो उसने मुझे कहा था कि मुझे मीठा बहुत पसंद है, मुझे उसकी एक एडिक्शन है। तो पहली बार जब उन्होंने ऐसा बोला तो मैंने उसको बहुत लाइटली लिया। मैंने सोचा कि ये होगा, ऐसे ही सब बोलते हैं, मीठा स्वीट खाना, मीठा खाना, ये कोई एडिक्शन तो नहीं होगा। इतना उस बात पर ध्यान नहीं दिया। और चलते चलते बहुत अच्छा उनका आपस में एक संबंध बना, स्नेह भरा संबंध बना, एक दूसरे के प्रति प्यार भी था, शादी हो गई। शादी होने के बाद उन्होंने देखा कि बहन जी जो थी उनका सच में मीठा इतना उनको पसंद था कि वो अपने को कंट्रोल नहीं कर पाते थे। जिसको एडिक्शन कहा जाता है ना, तो वो एडिक्शन क्या होता है वो उन्होंने कहा, मैंने तब देखा कि ये एडिक्शन है। समझो कोई व्यक्ति एक साथ एक मीठा खा सकता है ना, अपने को रोक नहीं पाते हैं तो दो मीठा खा सकते हैं, लेकिन प्लेट में दिए हुए सारे मिठाई तो नहीं खत्म करेंगे। लेकिन उन्होंने देखा उनकी जो पत्नी थे तो वो इतना मीठा उनको पसंद था कि बिल्कुल अपने को रोक नहीं पाते थे। उस समय जबकि वो मिठाई खाते थे वो कुछ और बन जाते थे, उनको उसकी जो तड़प थी, उसके प्रति जो उनके फीलिंग्स थे, अलग लगता था, और बाकी समय उनको वो बिल्कुल अलग लगते थे। तो मन में उनके ये बात आ गई कि मैंने किससे शादी की, मैंने तो एक एडिक्ट के साथ शादी कर ली है। मेरा संबंध किससे बन गया, तो एक एडिक्ट के साथ संबंध बन गया। और ये चीज धीरे 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 मन में खटकती गई उनको, मन में ये चीज उनको जो संबंध था वो ठीक रखने में रुकावट आती गई, रख नहीं पाए, क्योंकि मन में बार बार उनके खटकते रहता था कि इसको बहुत मीठा पसंद है, कुछ अजीब सी बात है, कुछ अजीब सी बात है। और अपने आप को जब वो भाई कहते मैंने देखा कि ये चीज ऐसे तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये चीज तकरार का कारण बन गई और इसके कारण हमारे संबंधों में दूरी आ गई। उन्होंने कहा जब मैंने अपने आप को देखा तो मैंने पाया कि मेरे बचपन में मेरे माँ बाप मेरे आसपास के जो लोग थे उनको मैंने देखा, मेरे पिताजी जो थे वो बहुत परिवार के प्रति उनकी बहुत अच्छी फीलिंग्स रहती थी, सबका बहुत ध्यान रखते थे, बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनको शराब की एडिक्शन थी। जब वो शराब नहीं पीते थे तब वो बहुत अच्छे थे, लेकिन जब वो शराब पीते थे तो उनका रूप बदल जाता था। जब वो शराब पीते थे तो उतना वो प्यार दिखता नहीं था, कभी कभी गुस्सा हो जाते थे, अपने आपे में नहीं रहते थे, और एक दो बार तो हाथ भी उठा दिया। तो जब भी वो शराब पीते थे हमको अंदर में डर लगता था, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग होती थी, अविश्वास का वातावरण बन जाता था कि पता नहीं अब क्या हो जाएगा। और वो भाई कहते कि मेरे मन में मैंने देखा तो मुझे समझ में आया कि एडिक्शन इस शब्द से ही जैसे मैं घबरा गया हूं। तो बात भले वो बहुत नहीं थी, मीठा खाने की एडिक्शन को इतनी बड़ी एडिक्शन नहीं है, लेकिन वो पिछली वाली बात इस बात से जुड़ी तो इसके कारण इस संबंध में भी प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो गई। किसके अंदर पिछला क्या रिकॉर्डेड है तो हमको नहीं पता, है ना? लेकिन वो जो पास्ट में हो गया है, एक चीज तो हम उस पास्ट को पास्ट रखें, जब पता चलता है कि ये मेरा पास्ट था, उसको पास्ट में रखा वो अलग बात है, ये अलग बात है, ये हमने किया। और दूसरी चीज कि जो पास्ट में हो गया उसको बार 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 रिपीट करके ताजा नहीं करते जाएं। जो एक बार घटना घटी दूसरी बार वही की वही रिपीट होगी वो जरूरी नहीं है, राइट? तो उस संबंध में हीलिंग करने के लिए दोनों पार्टी, वाइफ को भी एडिक्शन थी वो तो बात थी, लेकिन हस्बैंड को भी अपने आप को ये हील करने की जरूरत थी कि मैं इस बात को छोड़ूं कि एडिक्शन है तो हमारे संबंध में प्रॉब्लम आनी है, ये एडिक्शन है इसलिए ट्रस्ट नहीं हो सकता है, इसलिए आपस में प्यार नहीं हो सकता है, इस बात को छोड़ते जाना है। और आखिर में हम कहेंगे कि हमें अपने संबंधों को हील करना है, एक दूसरे के प्रति एक्सेप्टेंस की फीलिंग, रिस्पेक्ट की फीलिंग लानी है, यही हमारा संबंधों का फाउंडेशन है। कई बार हम अपने को फील करते हैं कि शायद हम इतना नहीं कर पाएंगे या हम अपने आप को हील नहीं कर पाएंगे। कहते हम अपने आप को जिस तरह से देखते हैं तो दुनिया भी हमको उसी दृष्टि से देखती है, राइट? वर्ल्ड जो है एक मिरर है हमारे अंदर के थॉट्स के लिए। अगर मैं अपने आप में सोचती हूँ मैं ठीक नहीं हूँ तो मुझे लगेगा कि दूसरे भी मुझे उसी नजर से देख रहे हैं कि ये ठीक नहीं है। अगर मैं अपने आप को सोचती हूँ कि मेरे में कमी है तो हम यही सोचेंगे कि दूसरे मेरे में कोई कमी ही देख रहे हैं। क्या ऐसा लगता है कि नहीं लगता है? हाँ? अगर मैं किसी के प्रति जजमेंट पास कर रही हूं तो मुझे जरूर ये डर रहेगा कि दूसरे भी मेरे प्रति जजमेंट्स पास कर रहे होंगे, या दूसरों की जजमेंट्स से मुझे डर लगेगा। अगर किसी को यहां स्टेज पर आकर बुलाया जाए और कहा जाए कि आप जो अभी सुना उसका जिस्ट हमको सुनाए, सार सुनाए, जो आपने सुना वो आकर आपको सुनाना है, सामने स्टेज पर आते हुए क्या फीलिंग होती है अंदर में? डर लगता है? डर लगता है? और जैसे स्टेज पर आए हम पहले क्या करते हैं? पहले क्या करते हैं स्टेज पर आएंगे, माइक हाथ में दिया जाए तो पहले क्या करेंगे? ओम शांति बोलेंगे। अच्छा, ओम शांति बोलेंगे तो शांत हो जाएंगे, है ना? फिर सब ठीक है ना? तो जैसे स्टेज पर आते हैं थोड़ा हम अपना ठीक ठाक करके आएंगे, है ना? बाल बाल ठीक करेंगे कि मैं ठीक हूं ना? क्यों? क्योंकि सब मुझे अभी देखने वाले हैं तो सब मेरे बारे में क्या सोचेंगे, ये मन में आता है ना? क्योंकि हम भी दूसरों को देखते हैं तो उनके बारे में सोचते ही होंगे, सोचते हैं कि नहीं। तो हमारी भी ये छोटी छोटी आदतें होती है ना। हमको क्या लगता है, क्या उसको चेंज करने की जरूरत है? चेंज करने की जरूरत है? सामने वाला आया, जो आया, जैसा आया, क्या पहना है, कैसे खड़ा है, ऐसे नहीं ऐसे, मन में ये सारा जो सोचना शुरू कर देते हैं, क्या लगता है उससे सामने वाले को तो शायद कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क किसको पड़ेगा? मुझे पड़ेगा, पड़ेगा ना, क्योंकि मेरे भी बारी आएगी और जब मैं सामने होऊंगा तो मेरे अंदर में दग दग शुरू हो जाएगी कि सब मेरे बारे में पता नहीं क्या सोच रहे होंगे, राइट? तो ये जो जजमेंट पास करने की हमारी टेंडेंसी है ना, उसको हमें चेंज करना चाहिए, चेंज करना चाहिए। अब चेंज करने के लिए हमको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि इतना इजी नहीं है ना, इतना ऑटोमेटिक बन गया है हमारा ये कि जो सामने आया, कब हमने ये शुरू कर दिया, हमको भी ध्यान पे नहीं रहता है। तो मेडिटेशन क्या करता है, अवेयरनेस हमारी क्रिएट करता है ना। हम अपने प्रति जागृत रहते हैं क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है, मुझे अपने संबंधों से प्यार है, और जिसके लिए हमें प्यार है उसका हम ध्यान रखेंगे, इसके लिए जो करना पड़े वो हम करेंगे, है ना। तो मुझे अपने से प्यार है इसीलिए मुझे दूसरों को जज नहीं करना है, इसीलिए मुझे दूसरों के प्रति मन में कमेंट्री चलती है वो नहीं चलाना है, क्योंकि वो उनको नहीं हर्ट कर रही है, वो मुझे हर्ट कर रही है। क्योंकि मुझे अपने आप से प्यार है इसीलिए मुझे दूसरों के प्रति पॉजिटिव सोचना है, कोई सामने आए उनके गुणों को सोचना है। हमारे संबंध में हम जहां पर है तो उनके हम गुणों को सोचे, न कि उसमें क्या कमी है ना। जब हमने वो एक्सरसाइज कराई कि एक व्यक्ति के बारे में सोचो जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, उसकी कोई एक बात आप सोचो, तो बात तो आई होंगी ना, शायद एक नहीं बहुत सारी बातें आई होंगी, है ना, और चूज करना पड़ा होगा कि ये बात को मैं सोचूं। उसके अलावा हम ये एक्सरसाइज अपनी रोज की करें कि जिससे भी मुझे प्रॉब्लम है, मुश्किल होगा लेकिन उसके अंदर क्या क्या अच्छाई है उसको देखें। कर सकते हैं? अभी उसी व्यक्ति के बारे में फिर से सोचिए, ठीक है, कि जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, उसका जो एक बिहेवियर आपने सोचा था जिससे आप डिस्टर्ब होते हैं, अब उसी व्यक्ति की कम से कम 5 अच्छाइयां आप सोचिए। चलिए, लेट्स डू इट। मन में लाएं उस व्यक्ति को जिससे हमारी संबंधों में बार बार तकरार होती है, कॉन्फ्लिक्ट आती है, उस व्यक्ति के अंदर अच्छाइयां भी बहुत भरी हुई है। चलिए, कम से कम 5 अच्छाइयां उनकी अपनी स्मृति में लाएं। कर लिया, किया सबने, स्मृति आई, सहज था या मुश्किल था? सहज था या मुश्किल था? जिसको सहज लगा एक हाथ दिखाए, अच्छा, मुश्किल लगा? हाँ, कुछ 2-3 जने ऑनेस्टली हाथ ऊपर कर रहे हैं। लेकिन कर पाए ना, पांचों बातें, पांच विशेषताएं निकाल पाए ना, निकाल पाए, बहुत अच्छा। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप हम आगे बढ़ाते हैं, हम इसकी एक आदत बना ले, क्योंकि जब हम दूसरों की अच्छाई को सोचते हैं ना, तो भी फायदा हमको ही होता है। सामने वाले को फायदा हो ना हो, हम जिसके बारे में सोचते हम वैसा बनते जाते हैं ना, तो हम अच्छाइयों के बारे में सोचेंगे, फायदा हमको होगा, है ना। हम किसी के लिए सोचते हैं कि वो बहुत पीसफुल है, लविंग है, तो वो तो उनको वाइब्रेशन जाएंगी और हमारे अंदर भी बार 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 वो चीज रिपीट होती जाएंगी, राइट। तो इस रीति से हम अपनी हीलिंग करेंगे। एंड फाइनली कहते परमात्मा, वो तो सुप्रीम सर्जन है, सबसे बड़ा हीलर वही है, है ना। तो हमारी सबसे अच्छी हीलिंग अगर हमको करनी है, हमें अपने आप में तो मेहनत करनी ही है, अपने विचारों को देखने की, अपने विचारों को पॉजिटिव रखने की, अपने दृष्टिकोण को पॉजिटिव रखने की मेहनत तो करनी है, लेकिन परमात्मा से एक संबंध रखने की बहुत बहुत जरूरत है, कि जो हमको अनकंडीशनल लव देता है, अनकंडीशनली हमको एक्सेप्ट करता है, वो हमको जज नहीं करते हैं कि हम क्या है, कैसे हैं, हमने क्या किया, हमने क्या नहीं किया, राइट। तो ऐसे सुप्रीम फादर से हम अपना कनेक्शन जोड़ेंगे। चलिए हम एक मेडिटेशन करते हैं, और जो हमने बातें आज सुनी उसको रिफ्लेक्ट करते हैं। हमारा संबंध एक बहुत मीठा संबंध उस हीलर के साथ है, परमात्मा, जो कि प्रेम का सागर है। मैं आत्मा उस परमात्मा की बहुत मीठी प्यारी संतान हूं। वो बड़े प्यार से मैं जो हूं, जैसी हूं, मुझे स्वीकार करता है। मेरा सबसे परम हितैषी परमात्मा है। वो मुझे हर तरीके से, हर तरफ से सपोर्ट करते हैं। वो मेरे भीतर मेरी बेस्ट स्वरूप को देखते हैं। He wants me to be my best. मैं आत्मा जिस किसी के भी संबंध संपर्क में आती हूं, मैं उनको भी इस पॉजिटिव दृष्टि से देखती कि ये भी आत्मा मेरी तरह ही एक जीवन यात्रा पर है। कई जन्मों की, कई अलग अलग अनुभवों की रिकॉर्डिंग उस आत्मा में है। वो अपनी जगह पर ठीक है, मैं उनको जो है जैसे है स्वीकार करती हूं। मुझे विश्वास है उस आत्मा में भी बहुत बहुत अच्छाई भरी हुई है। I love and appreciate them for whom they are. मैं उनसे स्नेह और प्यार करती और जो इस यात्रा से वो गुजरे हैं मैं इसको समझती हूं। मैं और वो हम परमात्मा के सामने हैं, उनसे अनकंडीशनल प्यार शक्ति प्योरिटी की किरणें ले रहे हैं। अपने को हील करते अपने संबंधों को हील कर रहे हैं। ओम शांति।